नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नर्सरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। पैटर्न्स ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर मार्टिन फाउलर की एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिजाइन पर केंद्रित संदर्भ पुस्तक है। यह किसी एक प्रोग्रामिंग भाषा, फ्रेमवर्क या उत्पाद की विधि नहीं सिखाती, बल्कि उन बार बार उभरने वाली संरचनात्मक समस्याओं को पहचानती है जिनसे व्यावसायिक अनुप्रयोग जूझते हैं। पुस्तक में 40 से अधिक पैटर्न दिए गए हैं, जिनके माध्यम से लेखक डोमेन लॉजिक, रिलेशनल डेटाबेस मैपिंग, वेब प्रेजेंटेशन, ट्रांजैक्शन, सेशन स्टेट, कॉन्करेंसी और वितरण के विकल्प समझाते हैं। इसका उद्देश्य तैयार नुस्खे थोपना नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही समझौता चुनने की क्षमता विकसित करना है। फाउलर दिखाते हैं कि तकनीकी मंच बदल सकते हैं, पर जटिल व्यावसायिक नियमों, डेटा की विश्वसनीयता और प्रणाली की सीमाओं से जुड़े मूल वास्तु संबंधी प्रश्न बने रहते हैं। मूल उदाहरण पुराने जावा और .NET परिवेशों से आते हैं। फिर भी पुस्तक की सबसे उपयोगी बात पैटर्न का नाम, उसका संदर्भ, उसके परिणाम और उसकी सीमाएं स्पष्ट करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लेयरिंग के जरिए जिम्मेदारियों को स्पष्ट और नियंत्रित रखना पुस्तक का आधारभूत विचार लेयरिंग है, यानी अनुप्रयोग को ऐसी परतों में बांटना जिनकी जिम्मेदारियां अलग और समझने योग्य हो। सामान्यतः प्रेजेंटेशन लेयर उपयोगकर्ता या बाहरी अनुरोधों से संवाद करती है, डोमेन अथवा बिजनेस लॉजिक लेयर नियमों और निर्णयों को रखती है, और डेटा सोर्स लेयर भंडारण के साथ काम करती है। यह विभाजन केवल फोल्डर या प्रोजेक्ट बनाने का नियम नहीं है, इसका व्यावहारिक उद्देश्य यह तय करना है कि बदलाव का प्रभाव कहां तक सीमित रहेगा। उदाहरण के लिए, स्क्रीन का रूप बदलने पर मूल्य निर्धारण का नियम नहीं बदलना चाहिए, और डेटाबेस क्वेरी बदलने पर वेब पेज के व्यवहार को नहीं टूटना चाहिए। फाउलर इस बात पर भी जोर देते हैं कि परतें कठोर धार्मिक नियम नहीं है। किसी साधारण प्रणाली में अत्यधिक परतें अनावश्यक जटिलता, अतिरिक्त कॉल और अस्पष्टता पैदा कर सकती है। उल्टे बिना सीमा के सीधे डेटाबेस कॉल या यूआई में व्यावसायिक नियम भर देना प्रणाली बढ़ने पर रखरखाव को कठिन बनाता है। इसलिए लेयरिंग का सही उपयोग निर्भरता की दिशा, टीम की जरूरत और परिवर्तन की संभावना देखकर होता है। पुस्तक इसे एक ऐसा निर्णय मानती है जो परीक्षण, पुनः उपयोग और दीर्घकालिक संशोधन की लागत को प्रभावित करता है। दूसरा, ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट। टेबल मॉड्यूल और डोमेन मॉडल के बीच सही चुनाव फाउलर डोमेन लॉजिक को व्यवस्थित करने के लिए एक ही श्रेष्ठ शैली घोषित नहीं करते। ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट में हर व्यावसायिक कार्य, जैसे ऑर्डर बनाना या भुगतान दर्ज करना, एक क्रमबद्ध प्रक्रियात्मक स्क्रिप्ट के रूप में लिखा जाता है। सीमित नियमों वाले अनुप्रयोग में यह तरीका सीधा, पढ़ने योग्य और रिलेशनल डेटाबेस के साथ सहज हो सकता है। समस्या तब आती है जब नियम अनेक प्रक्रियाओं में साझा हों, अपवाद बढ़ें और वही तर्क बार बार दोहराया जाने लगे। टेबल मॉड्यूल एक तालिका या रिकॉर्ड समूह से जुड़े व्यवहार को एक मॉड्यूल में रखकर मध्यवर्ती विकल्प देता है। जटिल व्यवसाय क्षेत्र के लिए डोमेन मॉडल अधिक उपयुक्त हो सकता है, जहां ऑब्जेक्ट केवल डेटा कंटेनर नहीं रहते, बल्कि नियम और व्यवहार भी संभालते हैं। इसका लाभ यह है कि व्यवसाय की भाषा कोड की संरचना में अधिक स्पष्ट रूप से दिख सकती है, लेकिन डोमेन मॉडल का लाभ अपने आप नहीं मिलता। उसे समझदार सीमाएं, सतर्क मैपिंग और टीम की अनुशासित डिजाइन क्षमता चाहिए। पुस्तक का महत्वपूर्ण पाठ यह है कि सरल समस्या पर जटिल ऑब्जेक्ट मॉडल थोपना भी गलती है। चुनाव को नियमों की जटिलता, बदलाव की आवृत्ति और तर्क के साझा होने की मात्रा के आधार पर करना चाहिए। तीसरा, रिलेशनल डेटाबेस और ऑब्जेक्ट मॉडल के बीच मैपिंग की वास्तविक लागत। पुस्तक का बड़ा हिस्सा ऑब्जेक्ट उन्मुख अनुप्रयोग और रिलेशनल डेटाबेस के बीच मौजूद असंगति पर केंद्रित है। ऑब्जेक्ट पहचान, संदर्भों और उत्तराधिकार के आधार पर सोचते हैं, जबकि रिलेशनल डेटाबेस पंक्तियों, कुंजियों और तालिकाओं के रूप में डेटा रखते हैं। यह अंतर केवल तकनीकी असुविधा नहीं है, क्योंकि गलत मैपिंग से डुप्लीकेट डेटा, अनावश्यक क्वेरी, अस्पष्ट स्वामित्व और कमजोर प्रदर्शन पैदा हो सकता है। फाउलर एक्टिव रिकॉर्ड और डेटा मैपर जैसे पैटर्नों के माध्यम से अलग अलग संतुलन समझाते हैं। एक्टिव रिकॉर्ड में डेटा और उसके स्थायी भंडारण का व्यवहार एक ही ऑब्जेक्ट में रहता है, इसलिए साधारण क्रड प्रकार के कामों में विकास तेज हो सकता है। डेटा मैपर डोमेन ऑब्जेक्ट को डेटाबेस विवरण से अधिक स्वतंत्र रखता है, जो जटिल डोमेन मॉडल में उपयोगी होता है पर अतिरिक्त संरचना मांगता है। आइडेंटिटी मैप एक ही डेटाबेस रिकॉर्ड के लिए एक ही सत्र में कई असंगत ऑब्जेक्ट बनने से रोकता है। यूनिट ऑफ वर्क यह दर्ज करता है कि किन ऑब्जेक्टों में परिवर्तन हुए हैं और उन्हें एक समन्वित ट्रांजैक्शन में कैसे सहेजना है। आधुनिक ORM इन विचारों को छिपा सकते हैं, पर पुस्तक बताती है कि इनके पीछे का व्यवहार समझे बिना डेवलपर प्रदर्शन और डेटा संगति की समस्याओं का निदान नहीं कर पाएगा। चौथा, वेब प्रेजेंटेशन और सेशन स्टेट में सरलता, सीमाएं और उपयोगकर्ता अनुभव। वेब अनुप्रयोगों के लिए पुस्तक प्रेजेंटेशन लॉजिक और अनुरोध नियंत्रण को अलग समस्या के रूप में देखती है। पेज कंट्रोलर में प्रत्येक पेज या क्रिया अपने अनुरोध को संभालती है, इसलिए छोटे और स्पष्ट अनुप्रयोगों में प्रवाह समझना आसान रहता है। फ्रंट कंट्रोलर एक केंद्रीय प्रवेश बिंदु देता है, जिससे प्रमाणीकरण, लॉगिंग, त्रुटि प्रबंधन और रूटिंग जैसी साझा नीतियां एक जगह संभाली जा सकती है। इसी तरह ट्रांसफॉर्म व्यू और टू स्टेप व्यू जैसे पैटर्न डेटा को उपयोगकर्ता के सामने प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करते हैं। इनका उद्देश्य यह रोकना है कि दृश्य बनाने का कोड डोमेन नियमों और डेटाबेस विवरणों के साथ उलझ जाए। सेशन स्टेट पर चर्चा पुस्तक का व्यावहारिक पक्ष दिखाती है। HTTP स्वभावतः स्टेटलेस है, जबकि उपयोगकर्ता की खरीदारी, बहुचरणीय फॉर्म या पहचान संबंधी संदर्भ अक्सर अनुरोधों के बीच बनाए रखने पड़ते हैं। स्टेट सर्वर मेमोरी, डेटाबेस, क्लाइंट या किसी अन्य माध्यम में रखा जा सकता है और हर विकल्प में विस्तार क्षमता, सुरक्षा तथा विफलता के अलग परिणाम है। पुस्तक का स्थायी सबक है कि जितना संभव हो स्टेटलेस डिजाइन रखें। जब स्टेट जरूरी हो तो उसके स्वामी, जीवनकाल और पुनर्प्राप्ति की रणनीति को स्पष्ट रखे, ना कि उसे अनजाने में हर लेयर में फैला दे। अंत में कॉन्करेंसी और वितरण में डेटा संगति को प्राथमिकता देना। एंटरप्राइज प्रणाली में कई उपयोगकर्ता एक ही जानकारी को एक समय पर पढ़ और बदल सकते हैं। पुस्तक कॉन्करेंसी को केवल डेटाबेस लॉक की सुविधा नहीं, बल्कि व्यावसायिक जोखिम की समस्या मानती है। यदि दो लोग एक ही रिकॉर्ड के पुराने संस्करण पर बदलाव करें, तो एक का परिवर्तन दूसरे को मिटा सकता है। ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी नियंत्रण मानता है कि टकराव दुर्लभ होंगे और सहेजते समय संस्करण या मूल डेटा की जांच करता है। यह लंबे समय तक लॉक रखने से बचाता है, पर टकराव होने पर उपयोगकर्ता को बदलाव दोहराना पड़ सकता है। पेसिमिस्टिक लॉकिंग पहले ही संसाधन को रोक सकती है, लेकिन इससे प्रतीक्षा, डेडलॉक और कम थ्रूपुट का खतरा बढ़ता है। फाउलर ट्रांजैक्शन की सीमाओं, आइसोलेशन और ऑफलाइन कार्य के प्रभावों पर भी ध्यान देते हैं। वितरण रणनीतियों में उनका प्रसिद्ध सावधान करने वाला सिद्धांत है कि ऑब्जेक्टों को अनावश्यक रूप से वितरित न करें। नेटवर्क कॉल, स्थानीय मेथड कॉल जैसे विश्वसनीय या सस्ते नहीं होते, क्योंकि विलंब, आंशिक विफलता और अलग अलग संस्करणों की समस्या मौजूद रहती है। इसलिए दूरस्थ सीमाओं पर कम, स्पष्ट और अपेक्षाकृत मोटे इंटरफेस बेहतर रहते हैं। यह दृष्टि आज के सेवा आधारित तंत्रों में भी उपयोगी है, जहां नेटवर्क को अदृश्य मानने के बजाय डिजाइन का वास्तविक हिस्सा मानना चाहिए। निष्कर्ष में पैटर्न्स ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन आर्किटेक्चर उन डेवलपर्स, टेक्निकल लीड्स, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स और अनुभवी विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयोगी है, जो व्यावसायिक अनुप्रयोगों की संरचना पर सोचने की शब्दावली बनाना चाहते हैं। विशेष लाभ उन लोगों को होगा जो किसी फ्रेमवर्क का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन एक्टिव रिकॉर्ड, यूनिट ऑफ वर्क, डेटा मैपर, फ्रंट कंट्रोलर या ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग के पीछे के वास्तु संबंधी समझौते स्पष्ट रूप से नहीं जानते। पुस्तक पढ़ने के बाद पाठक हर पैटर्न को अपनाने के बजाय यह पूछने में सक्षम होता है कि समस्या वास्तव में कितनी जटिल है, परिवर्तन कहां होंगे, डेटा का स्वामित्व किसके पास है और विफलता की स्थिति में क्या स्वीकार्य है। इसका मूल परिवेश जावा, .NET, रिलेशनल डेटाबेस, XML और उस समय की वेब तकनीकों से जुड़ा है, इसलिए इसे आधुनिक ढांचे का प्रत्यक्ष ब्लूप्रिंट नहीं मानना चाहिए। कुछ प्रस्तुति और वितरण संबंधी उपाय आज पुराने लग सकते हैं, फिर भी यह सीमा पुस्तक की उपयोगिता समाप्त नहीं करती, क्योंकि इसके केंद्रीय प्रश्न अभी भी जीवित है। समान पैटर्न पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान व्यापक वास्तु स्तर पर पैटर्नों को जोड़कर देखने में है। यह केवल छोटे कोड स्तर के डिजाइन उपायों की सूची नहीं देती, यह डोमेन लॉजिक, स्थायित्व, वेब सीमा, ट्रांजैक्शन और नेटवर्क के संबंधों को एक साथ रखती है। इसलिए यह त्वरित समाधान की किताब कम और डिजाइन निर्णयों की समीक्षा करने वाला दीर्घकालिक संदर्भ अधिक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं मार्टिन फाउलर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।